खुदावंद के जलाली और माँ बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और सुनाएं, सब ठीक हैं जी? हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। सो इससे पहले कि हम उस जिंदा खुदा के कलाम को सुने, सीखें, समझें, आए हम सब खुदा के हुजूर झुकें, अपने अपने दिल की हालत का जायजा लें, अपने आप को जांचें। अगर कोई सोच, ख्याल, कमी, कमजोरी, ऐसा गुनाह है जो आप ही उससे वाकिफ हैं, तो खामोशी से खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करेंगे और उसका रहम और उसका तर्स मांगेंगे, ताकि खुदा का पाक रूह हमें इस काबिल बनाए कि हम खुदा की आवाज़ को सुनने, समझने और उस पर अमल करने वाले बने। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, तेरे कलाम के लिए हम शुक्रगुजार हैं। आज की दी गई तमाम नेमतों, बरकतों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, और ख़ास कर खुदा बाप तेरी वफादारी के लिए कि तू वफादार रहता है, पुश दर पुश वफादारी का खुदा है। तो खुदा बाप हम सबको वफादारी करना सिखा। यीशु मसीह के नाम में आज हम जो कुछ भी सीखें बड़ी बरकत दे। पाक रूह की रहनुमाई में, कुदरत में, जोर में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें जो बहन भाई कलामे खुदा पढ़ सकते हैं। नए अहदनामा में से इफ़िसियों के नाम पालूस रसूल का खत, आज हम उसके दूसरे बाब की 20वीं आयत में से सीखेंगे। हमने 19वीं आयत तो मुकम्मल किया, तो 19वीं आयत से 22वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस कहता है, 19वीं आयत, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए। 20वीं आयत, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है, तामीर किए गए हो, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हमने 19वीं आयत में से सीखा था कि पालूस रसूल इफिसस के रहने वाले उन बुतपरस्त लोगों को, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उन लोगों को जो एक वक्त में देवी देवताओं, उन बदरूहों और उन हाथ के बनाए हुए बुतों और खुदाओं की और देवियों की पूजा करते थे, पालूस ने जब उनको पैगाम दिया तो यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया। तो पालूस रसूल उनको सिखाते हुए कहता है कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, यानी कि इस जमीन पर तुम अब बगैर मकसद के नहीं, बल्कि तुम्हारा एक मकसद है, और तुम्हारी अबदी मंजिल उनको बताता है कि मुकद्दसों के हम वतन, यानी कि वो वतन जिसे आसमान कहा गया है, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को उस रात, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाते, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जरूर है कि मैं दुख उठाऊं, जरूर है कि मैं तमाम मुश्किलात का सामना करूं, जरूर है कि मुझ पर गुनाहों की वो भारी सजा डाली जाए जो तुम्हारे गुनाहों के बायस है, ताकि मैं गुनाह की कुर्बानी का बर्रा बनूं और खुदा के गजब और खुदा के कहर को अपने ऊपर ले लूं। उस राख पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह ने ये अपने शागिर्दों से कहा, यूहन्ना की इंजील 13 बाब से लेकर 17वें बाब तक और 14वें बाब में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं आसमान पर जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। ये वो जगह है जिसे मुकद्दसों के हम वतन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर खुदा के लोग जो उस पर यीशु पर ईमान रखते हैं रहते हैं। और पालूस ने यह भी उनको सिखाते हुए कहा कि खुदा के घराने के हो गए, कि अब तुम्हारा एक ठिकाना है, अब तुम्हारे रहने की एक जगह है। खुदा का खानदान हो गए। जैसे खुदा यसु मसीह ने अपने कलाम में यूहन्ना रसूल इस बात को खुदा का प्यारा शगिर्द लिखते हुए कहता है, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत में, कि जितनों ने खुदावंद यसु मसीह को खुदा का बेटा कबूल किया, नजात दहिंदा कबूल किया, खुदावंद खुदा ने उन सबको हक बख्शा कि वो खुदा के बेटे और बेटियां यानी के फर्जंद कहलाएं, यानी उन्हें जो उसके बेटे पर ईमान लाते हैं। तो ये बातें हमने सीखी। आज मैं चाहता हूं कि 20वीं आयत पर गौर करें। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल जब यहूदियों ने उसके खिलाफ साजिश की और उसे पकड़वा दिया और वो कैद खाना में था और उस कैद खाना की हालत में उसने ये खत लिखा, और 20वीं आयत में वो इफिसस के रहने वाले उन ईमानदारों को और आज जैसे के हम इसमें से सीखेंगे कि हमारे लिए खुदा का कलाम क्या कहता है। 20वीं आयत में पालूस कहता है कि ना कि सिर्फ हम खुदा के घराने के हो गए, और 20वीं आयत में कहता है और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है तमीर किए गए हो, वो उनको इस बात की तरफ लेकर जाता है कि तुम्हारी बुनियाद जो रखी गई है ईमान के बायस उस कोने के सिरे के पत्थर पर है, जिसकी कोने के सिरे के पत्थर पर है जो खुद मसीह यसू है, और उन तमाम नदियों की बुनियाद उसी कोने के सिरे के पत्थर के ऊपर रखी गई है। तो पालूस रसूल उन लोगों को कहता है कि तुम्हारी बुनियाद, तुम्हारी जड़ और तुम्हारे नींव या इब्तदा इस बात से होती है कि तुम रसूलों और नबियों की नींव पर कायम किए गए हो। रसूलों यानी कि यसु मसीह के वो शगिर्द यानी कि यसु मसीह के वो लोग जिन्होंने अपना घर बार कारोबार अपने माँ बाप बहन भाइयों को और बहुत से लोगों को और यहाँ तक के बहुत सी मुसीबतों को, इस दुनिया की ख्वाहिशों को, इस दुनिया की शौकियों को, इस दुनिया के रीति रिवाज को, इस दुनिया के इख्तियार को और खुदावंद यसु मसीह की खातर उन्होंने अपनी जान तक का इनकार ना किया। तो यहां पर खुदा का बंदा पौलुस कहता है और रसूलों नबियों की नींव, नींव से मुराद है यानी के बुनियाद जड़, जिस तरह के हम जब मकान को शुरू करते हैं तो मकान बनाने से पहले, इससे पहले के दीवारें शुरू करें, इससे पहले के उस पर छत डालें, उसकी बुनियाद रखी जाती है। किस लिए? ताकि अगर कोई तूफान आंधी बारिश आए तो वो मकान ठहर सके, वो मकान कायम रहे। तो यही बात खुदा का बंदा पालूस रसूल उनको सिखाते हुए कहता है, रसूलों और नबियों की नींव पर यानी के उन रसूलों ने इस बात पर ईमान की बुनियाद रखी। और उनकी बुनियाद क्या थी? किसी को याद है कि जब यसु मसीह अपने शिगिर्दों से बात कर रहा था तो यसु मसीह ने उनसे पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? अगर नहीं याद तो मेरे साथ एक हवाला निकालें नए अहदनामा में से। आज हम देखेंगे कि रसूलों की बुनियाद क्या थी, उनकी बुनियाद कौन था, उनके ईमान की जड़ क्या था, कौन था, क्या थी। मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब। 16वां बाब हम उसकी 13वीं आयत से देखेंगे। आज मैं चाहता हूं कि इस बुनियाद पर गौर करें कि ये बुनियाद कौन है, ये जड़ कौन है, ये वो नींव कौन है जिस पर उन रसूलों का ईमान और तवक्कल था, उन रसूलों का जिन्होंने अपनी जान का दरेग ना किया, उन रसूलों और शिगिर्दों का जिन्होंने दूर दराज जाना पसंद किया, जिन्होंने हर तरह के दुख और मुसीबत को अपने ऊपर उठाना कबूल किया। उनकी बुनियाद क्या थी, उनके ईमान की ताजगी क्या थी, उनको कौन सी ऐसी कुव्वत हासिल थी जो उन्हें इस काबिल बना गई कि वो पूरी दुनिया में फैल गए। उनका ईमान क्या था, उनकी बुनियाद क्या थी। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाप उसकी 13वीं आयत से देखेंगे। यहां पर लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। जब यीशु मसीह फिलिप्पी में गया, फिलिप्पी के इलाका में गया, जैसे आरवाला का इलाका है, जैसे साहिवाल का कहते कह सकते हैं गिर्दोनुमा, उसके चकूक, सो कैसरिया फिलिपी के इलाका में, ये वो इलाका था जो उस वक्त खुदा ने यीशु मसीह वहां पर दौरा करने के लिए वहां से गुजरते हुए गया, तो यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और 14वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। ये यीशु मसीह के शिगिर्दों का क्या था, जवाब था कि लोग ये कहते हैं कि वो एलिया हो सकता है, वो यर्मिया हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जो मौजजात करता था, एलिया की जिंदगी में हम देखते हैं कि उसने अजीब अजीब मौजजे किए। यर्मिया की जिंदगी में देखते हैं वो नोहा करने वाला, यानी कि रोने वाला नबी था जो अपनी उम्मत पर नोहा करता था। नोहे का मतलब है मातम करना, मातम जिसे कह सकते हैं रोना, वो रोने वाला नबी उसे कहा गया है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी में, यीशु मसीह अब्रानियों के मुसन्नत के मुताबिक, अब्रानियों के खत में देखते हैं वहां पर यीशु मसीह के बारे में ये बात कही गई है कि वो अपनी पूरी हयाती, अपनी जमीनी जिंदगी में आंसू बहा बहा कर खुदा के हजूर क्या करता रहा, मिन्नतें करता रहा कि इस उम्मत, उस वक्त के लोग खुदा की तरफ मुड़े। और इसीलिए जब यीशु मसीह यरूशलम के पहाड़ पर, यरूशलम शहर में उस पहाड़ी पर था उस रात को, तो उसने उस पहाड़ी से ये बात को कहा कि ऐ यरूशलम, ऐ यरूशलम, मैंने कितनी दफा तुझे चाहा कि अपने परों में छुपा लूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती हैं, लेकिन तुमने नहीं सुना, तुम ईमान ना लाए। तो यर्मिया नबी की तस्वीर नजर आती है, या नबियों में से कोई नबी, क्योंकि पुराने अहदनामा में कहा गया था, यहूदियों से ये वादा था, मूसा ने ये वादा बयान दिया था कि वो मेरे भाइयों में से एक नबी बरपा करेगा जो उम्मते इसराइल की गल्लाबानी करेगा, जो इसराइल के लिए बादशाह होगा, जो इसराइल के लिए निजात दहिंदा होगा। तो यीशु मसीह ने ये सवाल पूछे तो लोगों ने ये जवाब दिया और शिगिर्दों ने यीशु मसीह को बताया। और 15वीं आयत में क्या लिखा है, फिर यीशु मसीह ने सवाल पूछा शिगिर्दों से, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। आज हमारे दौर में भी बहुत से लोग यीशु मसीह को क्या कहते हैं कि जी वो एक नबी है, वो जी सिर्फ एक उस्ताद है, उसने अजीब अजीब काम किए हैं। सो आज अपने आप को इस जगह पर रख कर देखें कि अगर यीशु मसीह आपसे पूछे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो लोगों का सवाल जवाब ये होगा कि वो एक सिर्फ नबी है, वो एक उस्ताद है, वो गुलाम है और वो कुछ भी नहीं। बहुत से लोग कहेंगे कि मसीह झूठा है, बहुत से लोग कहेंगे कि वो खुदा का बेटा नहीं, बहुत से लोग कहेंगे कि मसीह निजात दहिंदा नहीं। तो आज के दौर में अपने आप को इस तस्वीर में देखें कि अगर यीशु मसीह अगर आपसे पूछे और कहे शिगिर्दों की जगह कि तुम मुझे क्या समझते हो, तो आपका जवाब क्या होगा। उम्मीद है कि आपका जवाब पतरस का जवाब हो, क्योंकि पतरस से जब यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा तो पत्रस शमौन पत्रस ने 16वीं आयत में लिखा है, जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये वही मसीह है जिसकी जिसके ऊपर नबियों और रसूलों की बुनियाद थी। आज उम्मीद है कि आपके ईमान की बुनियाद भी यही है, क्योंकि वो दौर आएगा और वो दौर आ चुका है जिसमें आप जिंदगी गुजारते हैं, लोग सबसे पहले इस बात का इनकार करेंगे कि वो जिंदा खुदा का बेटा नहीं। दूसरी बात, वो कहेंगे कि वो मसीह नहीं है। तीसरी बात, कहेंगे वो सलीब पर नहीं मुआ। चौथी बात, कहेंगे कि वो कभी भी खुदा का बेटा नहीं था। इसी बात को खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा और यूहन्ना और पतरस ने सही दुरुस्त जवाब दिया। आज मेरी दुआ यही है आरवाला की कलीसिया के लिए कि वो भी यही जवाब दें कि मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, ना कि लोगों की तरह कि वो उस्ताद है, ना कि लोगों की तरह कि वो गुमराह करने वाला है, ना कि लोगों की तरह जो लोग बहुत से दूसरे मजहब इस बात के बारे में कहते हैं कि मसीह कुछ भी नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमाउन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहर की है। उम्मीद है कि आज ये बात हम सब पर भी जाहर है। और यही बात पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया को याद दिलाना चाहता है कि रसूलों और नबियों की नींव जिस पर नया यरूशलम कायम किया जाएगा, ये उन रसूलों की तालीम थी उस दौर में कि यीशु मसीह खुदा का बेटा और नजात दहिंदा है जो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और वहां से वापस आएगा और बादशाही करेगा। आज आप लोगों को क्या बताते हैं? आज आपका जवाब क्या है लोगों के लिए? क्योंकि लोग आज समझते हैं कि वो एलिया है, वो यूहन्ना है, बपतिस्मा देने वाला वो यर्मिया है, या नबियों में से कोई नबी है। लेकिन यूहन्ना जवाब के बारे में कहता है, यीशु मसीह के बारे में, वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। मत्ती रसूल उसके बारे में कहता है, वो बादशाहों का बादशाह है। मरकस अपनी इंजील में कहता है कि वो कमजोर नाचीज आदम बनी नू इंसान के लिए नजात दहिंदा है, और यूहन्ना रसूल उसे कहता है कि वो अजली खुदा का बेटा है। और ये नबियों की नींव थी, ये नबियों की क्या थी? बुनियाद थी। ये नबियों की क्या थी? जड़ थी, जिस पर उनके घर उनका ईमान कायम था। आगे चलकर हम देखेंगे इसके बारे में और ज्यादा। सो मैं आज इस बात पर खत्म करना चाहता हूं कि हम किस खुदा के लिए जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम अपने लिए या फिर मसीह के लिए जिंदगी बसर कर रहे हैं, या दुनिया की ख्वाहिशों में मगन है। हमें बार बार कहने की जरूरत है, लोगों को याद दिलाने की जरूरत है, भट्टे की कलीसिया को, क्योंकि बहुतों ने अपने आप को इस दुनिया के हम शक्ल बना लिया है, इस दुनिया के हम शक्ल बन चुके हैं, और उनको पता ही नहीं कि वो किस खुदा और किस खुदावंदो खुदा खुदावंदो के खुदा और बादशाहों के बादशाह के लोग हैं। याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि वह यीशु मसीह है जो जिंदा खुदा का बेटा है, ना कोई हुआ है, ना होगा, और ना ही कोई और है। और उम्मीद है कि आज आप इस बात से वाकिफ हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि यीशु मसीह कौन है, तो आप बताने वाले ठहरें कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, ताकि एक ही खुदा की इबादत की जाए, ना कि बहुत से मबूदों की। आए हम दुआ करें। खुदा बाप हम सबको दलेरी दे ताकि हम भी पतरस की तरह कहने वाले बने कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, हम भी मार्था की तरह कहने वाले बने कि तू ही राह और हक और जिंदगी है और तू खुदा का बेटा जिंदा मसीह है। हम सबको खुदावंद इस बुनियाद पर कायम रहने की कुव्वत और ताकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।